Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
अध्याय 10, वर्ष बीतते गए। वर्ष बीतते गए, मौसम आए और चले गए। छोटे जानवरों की जिंदगी यूं ही भागती रही। एक समय आया जब क्लोवर, बेंजामिन, मोसेस, जो कि काला कौवा और सुअरों के अलावा किसी को विद्रोह से पहले वाला दिन याद नहीं थे। मुरियल मर चुकी थी, ब्लू बेल, जेस्सी और पिंचर भी मर चुके थे। जॉन्स भी मर ही चुका था। उसकी मृत्यु देश के दूसरे कोने में एक शराबी के घर हुई थी। स्नोबॉल को भी भुलाया जा चुका था। बॉक्सर भी भूला बिसरा था, अलावा उनका छोड़कर जो उसको जानते थे। क्लोवर अब एक मोटी घोड़ी थी जिसके जोड़ों में कड़ापन आ गया था। उसकी हमेशा लाल और पनीली आंखों में धुंधलापन का प्रभाव आ रहा था। उसकी उम्र सेवानिवृत्ति से 2 वर्ष ज्यादा हो गई थी, किंतु यह सच था कि आज तक कोई भी जानवर सेवा से निवृत्त नहीं हुआ था। और उम्र दराज जानवरों के लिए बागवान का एक कोना रखने वाली बात वो तो कब से बंद हो गई थी। नेपोलियन अब पूरे के पूरे 46 किलो का प्रॉड सुअर हो चुका था। स्क्वीलर इतना मोटा हो चुका था कि वो बड़ी मुश्किल से आंख खोल के देख पाता था। बूढ़ा बेंजामिन ही पहले जैसा था, केवल उसकी थूथन थोड़ी सफेद हो गई थी। बॉक्सर की मृत्यु के बाद से वो ज्यादा दुखी और चिड़चिड़ा हो गया था। अब फार्म में और ज्यादा जानवर थे, हालांकि बढ़ोतरी ज्यादा नहीं थी जितना पहले वर्षों में उम्मीद की गई थी। काफी जानवर पैदा हुए थे जिनके लिए विद्रोह सिर्फ एक धुंधली सी परंपरा थी, जिसके मौखिक रूप से एक दूसरों से जाना गया था और अन्य जानवरों को खरीदा गया था, जो बात उनके आने से पहले कभी नहीं सुनी गई थी। क्लोवर के अलावा फार्म में सिर्फ 3 घोड़े थे। वे सुडौल, ईमानदार, अच्छे जानवर थे, स्वेच्छा से काम करने वाले श्रमिक और अच्छे दोस्त, लेकिन थे बहुत बेवकूफ। कोई भी घोड़ा वर्णमाला के बी अक्षर से आगे पढ़ने के योग्य नहीं था। उन्होंने वो सब माना जो उन्हें विद्रोह के बारे में बताया गया था और पशुता के सिद्धांत के बारे में, विशेषकर क्लोवर द्वारा, जिसका वो संतान की तरह सम्मान करते थे। लेकिन इसमें संदेह था कि उन्हें यह सब कुछ समझ में आया था या नहीं। फार्म अब पहले से ज्यादा संपन्न था और बेहतर ढंग से संयोजित। अब उसमें 2 मैदान और शामिल हो गए थे जिन्हें मिस्टर प्लिंगटन से खरीदा गया था। पवनचक्की आखिरकार सफलतापूर्वक बन गई थी और फार्म के पास अपनी गहने, भूसी निकालने वाली मशीन, फूस उठाने वाला उपकरण था और कुछ नई इमारतें जुड़ गई थी। विम्पर ने अपने लिए कुत्ता गाड़ी खरीदी थी, हालांकि पवन चक्की को बिजली ऊर्जा प्रदान करने के लिए ही प्रयोग में लाया गया। इसकी जगह इससे मक्का पीसा जाता जिससे अच्छा धन लाभ होता। जानवर फिर दूसरी पवन चक्की के निर्माण के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, क्योंकि इसके लिए भी उनसे यही कहा गया था कि जब वो पूरा होगा तब उसमें डायनमो लगाया जाएगा। लेकिन स्नोबॉल ने जानवरों को जो सुख भोग के सपने दिखाए थे, बाड़े में बिजली की रोशनी, ठंड में गर्म पानी, हफ्ते में 3 दिन काम, इनके बारे में अब कोई बात नहीं होती थी। नेपोलियन ने ऐसे विचारों की निंदा करते हुए कहा, यह पशुता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। सबसे सच्ची खुशी मेहनत से काम करने और कंजूसी से रहने में ही है। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि बिना व्यक्तिगत रूप से जानवरों के धनी हुए सिवाय सुअरों और कुत्तों के फार्म तो संपन्न हो गया था, शायद आंशिक रूप से, क्योंकि वहां इतने ज्यादा सुअर और कुत्ते थे। नहीं, ऐसा नहीं था कि अपनी तरफ से वे काम नहीं करते थे। जैसा कि स्क्विलर कभी कभी कहते नहीं थकता था,
फार्म के निरीक्षण और संगठन में सैकड़ों काम रहते हैं। ज्यादातर काम इस तरह के होते हैं जिन्हें बाकी जानवर इतने अज्ञानी हैं कि समझ नहीं सकते। उदाहरण के लिए, सुअरों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उन रहस्यमय वस्तुओं पर जिन्हें फाइल, रिपोर्ट, आख्या, मिनट्स, कार्यव्रत और मेमोरेंडा कहा या ज्ञापन कहते हैं। ये सब बड़े कागज के टुकड़े यानी चादर होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है। जब सब कागज लिखाई से भर जाते हैं तब उनको अंगीठी में जला दिया जाता है। ये फार्म के लिए महत्वपूर्ण कार्य है।
लेकिन फिर भी न सुअर और ना ही कुत्तों ने कभी भी अपनी मेहनत से खाना पैदा किया, और वे वहां बहुत सारे थे। उनकी खुराक भी हमेशा से अच्छी रही थी। जहां तक दूसरों की बात है, उनकी जिंदगी जहां तक वे जानते थे वैसी थी जैसा हमेशा से रही थी। वे अक्सर भूखे रहते, फूस में सोते, वे पोखर से पानी पीते, खेतों में कड़ा परिश्रम करते, सर्दी में ठंड से परेशान होते और गर्मियों में मक्खी से। कभी कभी बूढ़े अपनी याददाश्त खंगालते यह निश्चित करने के लिए कि विद्रोह के शुरुआती दिनों में जब जोन्स का निष्कासन हुआ था तब वस्तुएं क्या आज से बेहतर थी या बदतर, वे याद ना कर सके। उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे वे अपनी आज की जिंदगी से तुलना कर सके। उनके पास कुछ ऐसा आधार नहीं था सिवाय स्क्विलर की आंकड़ों की सूची के, जो दिखा सके कि सब कुछ अच्छा और अच्छा हो रहा है और अच्छा हो रहा है। जानवरों ने पाया कि समस्या असाध्य है। हर हालत में अब उनके पास इन सब चीजों पर अंदाज लगाने के लिए समय भी बहुत कम रहता था। केवल बूढ़े बेंजामिन ने अपनी जिंदगी के हर पल को बारीकी से याद होने का दावा किया और जानता है कि चीजें कभी भी ना ही ज्यादा बेहतर थी और ना ही ज्यादा बदतर, सिवाय भुखमरी, कष्ट और निराशावाद के। इसलिए उसने कहा,
यह सब कभी भी बदलने वाला नहीं है, जिंदगी का नियम है।
फिर भी जानवरों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। ऊपर से उन्होंने एक क्षण के लिए भी अपना सम्मान भाव और पशु फार्म का सदस्य होने वाले विशेषाधिकार को नहीं खोया। पूरे देश में, पूरे इंग्लैंड में पशु फार्म अभी भी इकलौता फार्म था जिसका स्वामित्व और संचालन जानवरों के पास था। उनमें से एक भी नहीं, छोटे शावक भी नहीं, नवांगतुक भी नहीं, जो 10 और 20 मील दूर के फार्म से आए थे, जो हमेशा इस बात पर आश्चर्य ना करते हों। और जब जब उन्होंने बंदूक की गूंज सुनी और ध्वज दंड पर हरे झंडे को लहराते देखा तो गर्व से उनका दिल भर गया और बातें हमेशा पुराने ओजपूर्ण दिनों की तरफ मुड़ जाती। जोन्स का निष्कासन, 7 आदेशों का लिखना, महान युद्ध जिसमें इंसानी आक्रमणकारियों को पराजित कर दिया गया था, किसी भी पुराने सपने का त्याग नहीं किया गया था। जानवरों का गणतंत्र जो मेजर ने पहले ही बता दिया था, जब इंग्लैंड के हरे भरे मैदानों पर आदमियों के पैर कभी नहीं पड़ेंगे, अभी भी उसमें उनका विश्वास था। एक दिन वो आएगा, शायद जल्दी नहीं होगा, शायद आज के जानवरों की जिंदगी में नहीं, लेकिन फिर भी आएगा। इंग्लैंड के पशु की धुन शायद आज भी छिपकर इधर उधर गुनगुनाई जाती है। जो भी हो, यह सच है कि फार्म का हर जानवर इसे जानता है। हालांकि कोई जानवर इसे जोर से गाने की हिम्मत नहीं रखता। माना कि उनकी जिंदगी कठिन है और उनकी हर इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन उन्हें पता है कि वे दूसरे जानवरों की तरह नहीं हैं। अगर वे भूखे रहते हैं तो इसलिए नहीं कि उन्हें निर्दयी मनुष्यों को खिलाना है। अगर वे ज्यादा मेहनत करते हैं तो कम से कम वे अपने लिए काम करते हैं। उनमें से कोई भी दो पैरों का नहीं है। कोई जानवर दूसरे जानवर का मालिक नहीं है। सब जानवर बराबर हैं। ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में एक दिन स्क्वीलर ने भेड़ों को आदेश दिया कि वे उसके पीछे आए और उन्हें बेकार पड़े मैदान की ओर ले गया जो फार्म के दूसरे छोर पर था। पूरे दिन भेड़ों ने वहां स्क्वीलर की निगरानी में पत्ते पलटते बिताया। शाम को वह अकेला फार्म हाउस आया। चूंकि मौसम गर्म था उसने भेड़ों को वहीं रहने को कहा। अंत में एक हफ्ते तक वे वहीं रही। उस दौरान दूसरे जानवरों ने उन्हें नहीं देखा। दिन में ज्यादातर वक्त स्क्वीलर उन्हीं के पास ही रहता। उनसे कहा कि वो उनको एक नया गीत गाना सिखा रहा है, इसके लिए उसे निजता की आवश्यकता है। ये बात भेड़ों के वापस फार्म हाउस लौटने के बाद की ही है, जब एक खुशनुमा शाम को जानवर अपना काम करके वापस फार्म के घरों की तरफ आ रहे थे। प्रांगण की ओर से घोड़े की डरी हुई हिनहिनाहट, चौंक कर जानवर रास्ते में रुक गए। ये क्लोवर की आवाज थी। वो फिर हिनहिनाई और सब जानवर दौड़ने लगे और तेजी से प्रांगण में पहुंचे। तब उन्होंने देखा जो क्लोवर ने देखा था। सुअर अपने पीछे के दो पैरों पर चल रहे थे। हां, वह स्क्वीलर था। थोड़े अटपटे ढंग से, जैसे इस मुद्रा में अपने भारी भरकम शरीर को संभालने का अभ्यास ना हो, लेकिन पूर्ण संतुलन के साथ वो प्रांगण में चहलकदमी कर रहा था। और एक पल के बाद फार्म हाउस के दरवाजे से सुअरों की एक लंबी कतार निकली। सब अपने पिछले पैरों पर चल रहे थे। कुछ ने दूसरों से ज्यादा अच्छा किया। एक या दो थोड़े अस्थिर थे और लग रहा था जैसे वह एक छड़ी का सहारा चाह रहे हों, लेकिन उनमें से हर एक ने सफलतापूर्वक प्रांगण का चक्कर लगाया और अंततः वहां कुत्तों का जबरदस्त भौंकना शुरू हुआ और एक तीखे सुर में काले मुर्गे ने बांग दी और फिर नेपोलियन खुद चलता हुआ आया। शाही ढंग से सीधा खड़ा हुआ, अपनी दम्भी निगाहें इधर उधर डालता हुआ, उसके कुत्ते उसके चारों तरफ घूम रहे थे। उसने अपने आगे के पंजों में चाबुक पकड़ा हुआ था। वहां एक मौत का सन्नाटा था। स्तंभित, भयभीत, सिमटे हुए इकट्ठा हुए जानवर देखते रहे प्रांगण में सुअरों की एक लंबी कतार का धीरे धीरे चलना। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया उल्टी पुल्टी हो गई है। और फिर ऐसा समय आया जब पहला सदमा समाप्त हुआ और सब कुछ के बाद, उन कुत्तों के डर के बाद भी जो वर्षों से आदत बन चुकी थी, शिकायत कभी ना करना, कभी ना कोई नुस्ख निकालना, चाहे जो कुछ भी हो जाए। उन्होंने कुछ शब्द शायद विरोध के बोले, लेकिन बस उस वक्त भेड़ों ने ऊंचे स्वर में गाना शुरू कर दिया। चार पैर अच्छे, दो पैर बेहतर, चार पैर अच्छे, दो पैर बेहतर, चार पैर अच्छे, दो पैर बेहतर, चार पैर अच्छे, दो पैर बेहतर। सबके दिमाग में यह सवाल गूंज गया। बिना रुकावट के ये 5 मिनट तक चला, जब तक भेड़ चुप हुई, विरोध करने का मौका चला गया था, क्योंकि सुअर फार्म हाउस के अंदर चले गए थे। बेंजामिन ने अपने कंधे पर किसी की नाक की रगड़ महसूस की। उसने पलटकर देखा, वो क्लोवर थी। उसकी आंखें और धुंधली और फीकी लग रही थी। बिना कुछ कहे उसने उसके बालों को धीमे से खींचते हुए उसे खलिहान के कोने में ले गई, जहां 7 आदेश लिखे हुए थे। कुछ समय के लिए खड़े होकर दोनों सफेद अक्षरों से लिखी हुई उस दीवार को देखते रहे। मेरी आंखों की रोशनी अब जवाब दे रही है। जब मैं छोटी थी तब भी मैं पढ़ नहीं पाती थी कि वहां क्या लिखा है, लेकिन अब मुझे दीवार अलग सी लग रही है। क्या सात आदेश वही हैं जो पहले हुआ करते थे बेंजामिन? पहली बार बेंजामिन ने अपना नियम तोड़ा और उसने पढ़ा जो दीवार पर लिखा हुआ था, सब जानवर समान हैं, लेकिन कुछ जानवर बाकी जानवर से ज्यादा समान हैं। इसके बाद यह अजीब नहीं लगा। दूसरे दिन फार्म में काम का निरीक्षण करने के लिए सुअर अपने पंजों में चाबुक के साथ आए। यह आश्चर्य नहीं लगा कि सुअरों ने अपने लिए बेतार वाला यंत्र खरीदा था और अब दूरभाष स्थापित करने की तैयारी हो रही थी। उन्होंने जॉन बुल, टिटबिट्स और डेली मील मांगना शुरू कर दिया था। यह देखकर भी आश्चर्य नहीं लगा कि फार्म हाउस के बाग में नेपोलियस सिगार मुंह में पकड़े टहल रहा था। नहीं, तब भी नहीं जब सुअरों ने अलमारी से जोन्स के कपड़े निकालकर पहनना शुरू किया। नेपोलियन खुद काला कोट और मोहक घुड़सवारी की पोशाक पहने और पैरों में चमड़े की लैगिंग पहने दिखता, और जबकि उसकी प्रिय सुअरियां लहरियादार रेशम की पोशाक में होती जो कभी मिसेज जोन्स इतवार को पहना करती थी। एक हफ्ते बाद दिन में कई कुत्ता गाड़ियां फार्म हाउस तक आई। पड़ोसी किसानों के प्रतिनिधि मंडल का मुआयना करने के लिए न्योता दिया गया था। उनको पूरा फार्म दिखाया गया और उन्होंने जो देखा उसकी खूब सराहना की, विशेषकर पवन चक्की की। जानवर कद्दू की छटाई कर रहे थे, वो मेहनत से काम कर रहे थे और शायद ही जमीन की ओर से उन्हें अपना मुख ऊपर किया हो। पता नहीं था कि वे किससे ज्यादा डरे हुए थे, सुअरों से या फिर मनुष्य आगंतुकों से। उस शाम फार्म हाउस से जोर से ठहाकों की और गानों की आवाजें आ रही थी और अचानक मिलीजुली बोली की आवाज पर जानवर जिज्ञासा से व्यथित हो गए। वहां क्या हो रहा होगा, जबकि अब पहली बार जानवर और मनुष्य जाति समान स्तर पर मेलजोल कर रहे थे। एक मत होकर वे साथ साथ चुपचाप फार्म हाउस के बाग की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। फाटक के पास वे रुके, आगे बढ़ने के लिए थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन क्लोवर उन्हें अंदर ले गई। वे दबे पांव घर तक पहुंचे और जानवर जो लंबे थे उन्होंने भोजन कक्ष की खिड़की से अंदर झांका। वहां लंबे मेज पर चारों तरफ आधा दर्जन किसान और आधा दर्जन विशिष्ट सुअर बैठे थे। नेपोलियन खुद सम्मान केंद्र वाले आसन जो मेज के शीर्ष पर था, बाकी सभी ताश के खेल का आनंद ले रहे थे। लेकिन वे थोड़ी देर के लिए रुके। जरूर मध्यपान के समय शुभकामनाएं देने के लिए एक बड़ी सुराही को लोगों के बीच घुमाया जा रहा था और प्यालों में मदिरा भरी जा रही थी। किसी ने नहीं देखा उन आश्चर्यों से भरे जानवरों के चेहरे को जो खिड़की से उन्हें ताक रहे थे। फॉक्सवुड के मिस्टर प्लिंगटन खड़े हो गए थे, उसके हाथ में प्याली थी। उसने कहा, एक पल में मैं उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए कहूंगा, लेकिन वो करने से पहले मैं सोचता हूं कि मेरे ऊपर कुछ कहने की जिम्मेदारी है। मेरे लिए संतोष की बात है, अवश्य ही बाकी जनगण के लिए भी होगी, कि सालों का अविश्वास व गलतफहमी आज समाप्त हो गई है। ऐसा समय भी था, ऐसा नहीं है कि वो या अन्य उपस्थित व्यक्तियों ने ऐसा भाव साझा किया, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इंसानी पड़ोसियों द्वारा पशु फार्म के सम्मानीय मालिक को, वो इसे शत्रुता नहीं कहेगा, लेकिन शायद उन्हें थोड़े संदेह में देखा जा सकता था। इस बीच दुर्भाग्यपूर्ण कांड घटित हुए, गलत समझ वाले विचार फैले। यह समझा जा रहा था कि जानवरों द्वारा स्वामित्व और संचालित कार्य अस्वाभाविक है और वह पड़ोसियों को बेचैन कर देगा। ज्यादातर किसानों ने बिना जांच पड़ताल के यह मान लिया कि ऐसे फार्म में दुराचार और अनुशासनहीनता व्याप्त होगी। वो थोड़ा घबराए हुए थे कि इसका असर उनके अपने जानवरों और कर्मचारियों पर कैसा पड़ेगा। लेकिन अब संदेह दूर हो गए हैं। आज उन्होंने, उनके साथियों ने पशु फार्म की सैर की है और उसका कोना कोना अपनी आंखों से देखा है। और उन्होंने क्या नहीं पाया और क्या पाया? न सिर्फ सबसे आधुनिक प्रणाली, अपितु एक अनुशासन और सुव्यवस्था जो सब किसानों के लिए एक अच्छा उदाहरण होना चाहिए। उसे विश्वास है कि वो सही था यह कहने में कि पशु फार्म के छोटे जानवर ज्यादा परिश्रम करते हैं और दूसरे जानवरों की अपेक्षा कम भोजन पाते हैं। निश्चित ही उन्होंने और उनके साथियों ने आज कई ऐसी विशेषताएं देखी हैं जो वे अपने यहां तुरंत लागू करना चाहेंगे। उसने कहा वो अपनी टिप्पणी समाप्त करेगा और एक बार फिर ये जोर देकर मित्रता का भाव, जो होना भी चाहिए, पशु फार्म और पड़ोसी फार्म के बीच, सुअर और इंसानों के बीच आपसी हितों में तकरार होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके संघर्ष और उनकी कठिनाइयां एक हैं। क्या श्रम की समस्या सब जगह एक जैसी नहीं है? यहां यह साफ हो गया कि मिस्टर प्लिंगटन अभी अपने साथियों पर हास्यपद कटाक्ष मारने वाले हैं, लेकिन एक पल के लिए वो आनंद से इतना भर गया कि कुछ बोल ही नहीं सका। काफी दम घुटने के बाद, जिस दौरान उसकी ठोड़ियां बैंगनी पड़ गई थी, वो सामान्य होकर बोला, अगर तुम्हें अपने छोटे जानवरों के साथ रहना है तो हमें अपने निम्न वर्ग के लोगों के साथ। और इस कथन से मेज पर ठहाका गूंज उठा और मिस्टर प्लिंगटन ने फिर से सुअरों को बधाई दी। जानवरों की कम खुराक, लंबे काम का समय और आम रूप से उन्हें सिर ना चढ़ाने की प्रथा जो उसने पशु फार्म में देखा था। उसने अंत में कहा, अब लोगों से अनुरोध है कि पैरों पर खड़े हो जाएं और निश्चित कर लें कि उनके ग्लास भरे हों। सज्जनों, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं पशु फार्म की समृद्धि के लिए। वहां उत्साहवर्धक वाहवाही और पैर पटकना हुआ। नेपोलियन इतना कृतज्ञ हुआ कि अपनी जगह को छोड़कर मेज के दूसरी ओर प्लिंगटन की प्याली से प्याली मिलाकर फिर उसे पीकर खाली किया। जब वाहवाही समाप्त हुई, तब नेपोलियन, जो अपने पैरों पर खड़ा रहा था, उसने इशारा किया कि उसे भी कुछ बोलना है। नेपोलियन के बाकी भाषण की तरह वो छोटा और विषयानुकूल था। वो बोला, मैं भी खुश हूं कि नासमझी का दौर खत्म हुआ। काफी समय से किसी कपटी शत्रु द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही थी कि उसका, उसके साथियों का अपने पड़ोसियों के प्रति नजरिया कुछ विध्वंसकारी और क्रांतिकारी रहा था। उस पर पास के पड़ोसी फार्म में जानवरों के बीच विद्रोह फैलाने का आरोप भी लगा। यह सब कुछ सच्चाई से कोसों दूर था। उन्होंने एकमात्र उद्देश्य और इच्छा अब पहले से भी यही थी कि वे आपस में शांतिपूर्वक रहें और अपने पड़ोसी से अच्छे व्यापारिक संबंध हों। यह फार्म, जिस पर नियंत्रण करने का अवसर उसको मिला है, इस पर उसे गर्व है। वो एक सरकारी उद्योग है जो उसके आधिपत्य में है। उस पर संयुक्त रूप से सुअरों का मालिकाना हक है। मैं विश्वास नहीं करता कि पुराने संदेह अभी भी होंगे, लेकिन हाल ही में फार्म के नियमित कार्यों में परिवर्तन हुए हैं जो कि आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होंगे। पहले फार्म के जानवर एक बेवकूफी वाली प्रथा अपनाते थे जिसमें वे एक दूसरे को दोस्त या कॉमरेड कहकर संबोधन करते थे। इसको बंद करना था। यहां एक और विचित्र रिवाज था जिसकी उत्पत्ति अज्ञात थी। हर इतवार की सुबह को बगीचे में दंड के ऊपर कंकाल गड़े सुअर की खोपड़ी के पास कदम ताल होगा। यह भी बंद किया जाएगा और कंकाल को भी दफना दिया जाएगा। मेरे साथियों ने यह भी देखा होगा कि ध्वज दंड के ऊपर हरे रंग का झंडा लहराता है। ऐसा है तो उन्होंने यह भी देखा होगा कि इसमें सफेद रंग पहले जो खुर और सींग बने थे, अब उनको हटा दिया गया है। अब सिर्फ हरे रंग का
सादा झंडा होगा। मिस्टर प्लिंगटन के उम्दा और मित्रवत भाषण से मुझको एक ही शिकायत है। मिस्टर प्लिंगटन ने पूरे वक्त पशु फार्म कहकर संबोधन किया है। उनको निसंदेह पता नहीं होगा कि वो यानी नेपोलियन आज पहली बार घोषित कर रहा है पशु फार्म नाम को हटाया जा रहा है। आज के बाद से इस फार्म को मेनर फार्म से जाना जाएगा, क्योंकि मेरा विश्वास है कि यही उसका सही और मौलिक नाम भी है। सज्जनों, मैं भी आपको वही पहले जैसी शुभकामनाएं दूंगा, परंतु दूसरे ढंग से। ग्लास को ऊपर तक भर लें। सज्जनों, ये मेरी शुभकामनाएं मेनर फार्म की समृद्धि के लिए हैं।
वहां पहले की तरह फिर दिल से वाहवाही हुई और आखिर दम तक प्यालियां खाली की गई। लेकिन जिस प्रकार बाहर से जानवर ये सब देख रहे थे, उनको लगा कि वहां कुछ अजीब सा घट रहा था। वो क्या था जिसने सुअरों का चेहरा बदल दिया था? ग्लोवर की बूढ़ी धुंधली आंखें एक चेहरे से दूसरे चेहरे पर घूम रही थी। किसी की 5 हड्डियां थी, किसी की 4, किसी की 3, लेकिन क्या था जो पिघलता और बदलता सा लग रहा था? तभी तालियों का शोरगुल बंद हुआ। लोगों ने ताश उठा लिए और अपने खेल को आगे बढ़ाया, जो कुछ समय के लिए रुक गया था, और फिर जानवर चुपचाप वहां से चले गए। लेकिन वे अभी केवल 20 गज दूर भी नहीं गए थे तभी वे रुक गए। फार्म हाउस से स्वरों का कोलाहल सुनाई पड़ा। वे वापस दौड़े और खिड़की से फिर झांका। हां, वहां एक हिंसक लड़ाई चल रही थी। एक दूसरे पर चीखना, मेज पलटना, तेज संदेहपूर्ण निगाहें, गुस्से से नकारना। मुसीबत का स्रोत यह लग रहा था कि नेपोलियन और मिस्टर प्लिंगटन दोनों ने एक ही साथ हुक्म का इक्का चला था। 12 आवाजें गुस्से से चिल्ला रही थी और वे सब एक जैसी थी, कोई प्रश्न नहीं। अब सुअरों के चेहरे को क्या हुआ? बाहर खड़े सब ने सुअर से आदमी, आदमी से सुअर की ओर देखा और फिर से सुअर से आदमी की ओर। लेकिन अब यह कहना असंभव था कि कौन कौन था। सुअर, आदमी, आदमी, सुअर, कौन कौन था?
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।